दो चीज़ें हम कर चुके, अब तीसरे चीज़ देखेंगे गैर अल्लाह की इताअत। देखिए सोचना सीखें, एक बात गैर अल्लाह की इताअत, ये पता नहीं क्या होती है। नहीं, पहले एक लफ्ज़ सीखिए, गैर, फिर अल्लाह, फिर इताअत, तीन लफ्ज़ हैं इसमें। पहली बात आप सोचें गैर क्या होता है। जब मैंने लफ्ज़ गैर पे गौर किया ना, तो मुझे सूरत अल फातिहा का गैर याद आ गया कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। फिर गैर पे थोड़ा सा और सोचूँ ना, तो मुझे जहन में आता जुमला, लोग कहते हैं गैरों में शादी की है। फिर इसी तरह से बाज़ लोग कहते हैं हमसे क्या गैरियत बरतते हो, तो गैर कौन है जो अपना नहीं है। सीधी सी बात है, गार या गीर गैरन, जो अपना नहीं है, माँ सिवा कह लीजिए, गैर अल्लाह, और अल्लाह तो हमारा अपना है, उसके बारे में हमें क्या नहीं पता। अल्लाह तो सब कुछ है, अल्लाह ही तो सब कुछ है। अंत मकसूदी व रिदा का मतलूबी, पीछे पढ़ चुके, अल्लाह तो अपना है, तो गैर अल्लाह फिर क्या हुआ, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा। गैर बेगाने को भी कहते हैं। आप कहते हैं बड़े गैर गैर बनते हो, बड़ी गैरियत बरत रहे हैं, तो गैर अल्लाह कौन है? अननोन। अल्लाह तो नोन है, अल्लाह से मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाली हुई है, लेकिन अल्लाह के माँ सिवा की इताअत। अब इताअत क्या है? तौअन से, तौअम व करहन, खुशी से। तो इताअत वो काम होता है जो दिल की खुशी से किया जाए। तो आइए देखते हैं कि ये क्या अमल है कि जो इंसान को ईमान से निकाल देता है। नवाकिज़े ईमान में से ये भी है कि इंसान अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर, इसके अहकाम के बरखिलाफ, गैर अल्लाह की इताअत करे। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी में से अहम मानी यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत व इताअत के लायक नहीं। नंबर वन लिख लें, यानी ला इलाहा के बहुत सारे मानियों में सबसे अहम मानी क्या है कि अल्लाह के माँ सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतना तो मानते हैं, राइट? नमाज किसी और के नाम की नहीं होगी, रोज़ा किसी और के नाम का नहीं होगा, सदका किसी और के नाम का नहीं होगा। ऊपर पढ़ चुके हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल स्टोबनर मस्जिद में जो दर्स था वो इसी एक आयत पे ही हुआ कि कैसे हम इबादत के नाम पे तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं, लेकिन जब महया व ममाती की बात आती है तो खानदान, बिरादरी, रस्म व रिवाज, उसमें बड़ी डिटेल से इस पे बात हुई है। लेकिन जो असल खराबी है ना, जो हमें पता ही नहीं है, वो क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इताअत के भी लायक नहीं है। लफ्ज इताअत को आप बड़ा करके लिखें, इसके अंदर आपको इंसानों की पूरी जिंदगी का खुलासा मिल जाएगा। दुनिया में मोमिन जिस शख्स की भी इताअत करता है, वो इताअत अल्लाह की इताअत के ताबे होती है। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी, इरशादे बारी ताला है सूरत निसा आयत 80, मैं युतीर रसूल फकत अता अल्लाह, जो शख्स रसूलुल्लाह की इताअत करता है इसने अल्लाह ही की इताअत की। बात वाज़े? तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म एक बराबर। देखिए ज़ात फ़र्क है, मुकाम फ़र्क है, वो खालिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं, अल्लाह ताला जो है वो नूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, लेकिन बात दोनों की माननी है। जैसे कुरान की किसी आयत से कोई हुक्म साबित हो सकता है, मसला अखज हो सकता है, हराम हलाल में बदल सकता है, हलाल हराम में बदल सकता है, इसी तरह हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी ये सब कुछ हो सकता है। बात वाज़े? तो आप एक जुमला लिख लें एहतियात के साथ, अल्लाह और उसके रसूल की बात में कोई फ़र्क नहीं है, ज़ात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब लोग मुबालगा करते हैं, ख़ास तौर पे अशार की सूरत में, तो वो ज़ात में फ़र्क मिटा देते हैं। वही जो अहद था वो अहमद बन गया, नऊज़ु बिल्लाह, नहीं, अहद अहद है और अहमद अहमद है। फ़र्क ये कि बात दोनों की एक है। तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये दोनों ही चीज़ें बराबर की हैं। गोया के रसूल की बात मानने वाले ने अल्लाह की बात मानी, क्यों? क्योंकि रसूल को किसने कहा? अल्लाह को कहा। अगर किसी को पीछे से मैनेजमेंट से कोई मैसेज मिलता है और वो जाके सारे साथियों को कन्वे कर दे, पूरी क्लास को आके एक इंचार्ज कहती हैं कि कल छुट्टी है, अब कल छुट्टी है या कल इम्तिहान है, तो वो इंचार्ज खुद तो नहीं कह रही ना, पीछे से पूरे स्कूल के जो अहकाम थे उसमें से बात आई ना। तो जिसने उस टीचर की बात मान ली, उसने सिस्टम की बात मान ली। फिर इसी तरह से इसके अंदर आप ये एक चीज़ देखिए कि सबसे बड़ा इस वक्त नक्स उम्मत मुस्लिमा में यही है, हमें इताअत का फ़र्क नहीं समझ आ रहा। हम इबादात में उलझ जाते हैं जिस हद तक अल्लाह हमें तौफीक देता है। जब किसी नेकी का हुक्म आता है ना, या दिल जाता है, या मौका आता है, या हम जान के कोई नेकी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हम इबादात वाली नेकी करते हैं। मैं बड़े शोर से एक बात बोल रही हूँ, आप गौर से समझिएगा। लोग कहते हैं बुरा ख्वाब देखा, सदका दे दो, है ना। लोग कहते हैं बच्चा बीमार हो गया, नफिल पढ़ूंगी। बाज़ दफ़ा कोई बड़ी मुश्किल आती है, आप कहते हैं कि मैं उमरा करूंगी। ऐसा है ना, ये नोन है ना, ये जाना पहचाना है। आप किसी मुश्किल में पड़ गए, आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मैं तेरी फुलां बात मानूंगी। कोई ऐसा काम आज तक पर्दा नहीं करते थे, अल्लाह इस मुश्किल से निकाल, पर्दा करूंगी। आप भमें बनानी नहीं छोड़ते थे, आप इताअत कीजिए, युति रसूल कीजिए। यानी बात वाजे हुई है, यानी जब हम कोई कफारा देते हैं, जब कोई मन्नत मानते हैं, जब हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारे जहन में रह सह के बात इबादात की होती है। 100 नफिल पढ़ूंगी, भाई आप 100 नफिल मत पढ़ें, आप 2 हुक्म मान लें अल्लाह के। आप कहें अपने बच्चे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूंगी, मैं अपनी बच्ची की शादी में कोई एक खिलाफ शरा काम नहीं करूंगी, ये कीजिए। ऐसे करने लिए बहुत कम है, और कोई ऐसा कर ले तो लोगों की नज़रों में वो नेक कोई नहीं मशहूर होता। नेक लोगों को वही दिखते हैं जो इबादात करते हैं, लेकिन जिन इबादात के करने के बाद अल्लाह की इताअत का मादा दिल में उभरना था, वो फिर कोई नहीं उभरता। अब एक और बात है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कीजिए इबादत, नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, आप इशराक के नफिल पढ़ें, आप चाश्त पढ़ें, आप सदका दीजिए, नफिल कीजिए, तो क्या ये नवाफिल, या अपने तौर पे कहिए क्या ये इबादात आपको इताअत पे माइल नहीं करती? यानी आप कोई भी रास्ता इख्तियार करें अल्लाह की इताअत का या अल्लाह की इबादत का, आप देखेंगे हर इबादत जब शऊर के साथ की जाती है तो वो इताअत के रास्ते हमवार करती है। ये तो आज हम बेशऊर मुसलमान है ना, 100 नफिल पढ़े कोई, पढ़ते हैं लोग, 100 नफलों में कितनी दफा सूरह फातिहा आएगी? 100 दफा, 100 दफा एक जुमला अल्लाह ताला को कह के रहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई बंदी सुबह आके आपको 100 दफा ये जुमला बोले, मैं आपकी मासी, आप मेरी मालकन, जो आप कहेंगी मैं वो करूंगी, मैं आपकी गुलाम, मैं आपकी कनीज, आप जो कहेंगी वो करूंगी, मैं आपकी कनीज, जो आप कहेंगी वो करूंगी, मैं आपकी कनीज, जो आप कहेंगी मैं करूंगी, 100 दफा कोई आपके सामने जुमला बोले, तो आप कहते अच्छा ठीक है, चले आप इतनी मुअद्दब हैं, इतनी आप माशाल्लाह काम करने वाली हैं, तो जरा उठिए और जरा किचन साफ कर दें, ये ना मुझे कहें। तो 100 नफिलों में आपने 100 झूठ बोले। देखिए इस वक्त जिस बात पे झंझोड़ के उम्मत के कंधे पकड़ पकड़ के खींचने की जरूरत है, वो यही फर्क है। वो कहते हैं ना, ये उम्मत रिवायात में खो गई। इबादत के नाम पर हम खाना काबा ही जाते हैं, हज उमरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहीं जाके होता है। उस पे तो जरा सी 19 से 21 चीज दिखे ना तो हम कहते हैं इनको मारो, इनको कत्ल करो, ये करो। पिछले दिनों एक किसी ने बड़ा भोंडा सा मजाक किया, तस्वीर है खाना काबा की, और पूरा खाना काबा ही का एक की पैरोडी बनी हुई थी, और उसमें लोगों को दिखा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो एक वो तस्वीरें थी और पीछे से किसी बड़े दीन से भरपूर जज्बात वाले कोई बुजुर्ग ही होंगे, आलिम होंगे, उनका मैसेज आ, देखें ये दुनिया, पता नहीं नाइजीरिया कहाँ ये हो रहा है दुनिया में, पकड़िए इनको, मारिए, सारी दुनिया में इस तस्वीरों को आम कीजिए और इनके कत्ल के फतवे जाहिर कराए, और ये बहुत बड़ी नेकी है। यानी उनकी बातों से जो बात समझ आई कि दुनिया में किसी जगह मुसलमानों ने काबा और उसका सारा कुछ बना लिया और अब लोग वहाँ हज या उमरा कर रहे हैं, उसको देखकर उन्होंने इतना प्रवोक किया हुआ था कि इस वक्त अगर आपने इसको आगे ना किया तो आपके ईमान की मौत होगी, आपका इस्लाम खत्म हो जाएगा, कि इसको जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया के मीडिया में इसको फैला दें। मैंने तो कभी ऐसी चीज़ों को गौर से देखा भी नहीं है, और 2-4 दिन गुजरे तो फिर किसी का मैसेज आ गया कि ना 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 खुदारा उसको ना कीजिए, ये तो फलां मुल्क वालों ने अपने मुल्क में हज उमरे पे जाने वालों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, लोगों को पहले ही दिखाते हैं कैसे होना है, तो यहां से सीख के जाओ। अब आप देखिए इस वक्त कितनी दीनी हैरत है, कोई बना ले हाँ काबा, आप नॉर्वे में बैठे हैं, सेंट्रम से दूर कोई जगह ले खाना काबा जैसा, एक पूरा मॉडल बना ले, मेरा आले सारी दुनिया के मुसलमानों को गैरत आएगी, मार दो कत्ल कर दो। तो जब हम काबा नहीं बना सकते, जब हम बैतुल्ला ऐसा नहीं बना सकते, तो इताअत कैसे दूसरों की? सिर्फ इस एक सवाल का जवाब आप खुद से लें, मत दूसरों से लें। कब से कुरान सुन रही हूं, कितना सुना है, क्या जो हुक्म अभी तक मेरे अमल में नहीं आए वो कुरान का हिस्सा नहीं है? सीधी सी बात है। देखिए एक है आप करना चाह रहे हैं पूरा नहीं हो रहा, लुढ़कते पुड़कते, और एक ये कि आप माशाल्लाह वैक्सेस वैक्स्ड हार्ट बना के कहते हैं ये हुक्म मेरे लिए कोई नहीं है, अब मैंने इस उम्र में क्या पर्दा करना है, अब मेरे जैसी मसरूफ औरत कैसे करे, और मैं तो वेस्ट में रहती हूँ और मैं तो ईस्ट में नहीं हूँ। भैया आप जो मर्जी कहते रहें, अल्लाह का हुक्म एक है। तो याद रखिए जब तक इताअत का जज्बा ना उभरे, इबादत भी खोखली है। दुनिया में मोमिन जिस शख्स की भी इताअत करता है वो इताअत अल्लाह की इताअत के ताबे होगी। ये जुमला भी लिख लें, ये हदीस में भी आता है कि ला ताअतल्लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिस बात में खालिक की नाफरमानी हो उसमें मखलूक की इताअत नहीं होगी। मैं कहती सिर्फ इस एक हदीस पे आज से अमल की नीयत कर लें, उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, उसमें शौहर भी आ जाते हैं, उसमें बीवी भी आ जाती है, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें ख़ानदान भी आ जाता है। हमारी ख्वाहिशों के किबले और, हमारे नमाजों के किबले और हमारी शादियों के किबले और हमारी रस्म और रिवाज के किबले और। बड़े बड़े दीनदारों को देखा है, वो जब किसी अमली मैदान में कूदते हैं तो फिर पता चलता है कि इबादत किसकी और इताअत किसकी। सोचती हूँ अक्सर और आजकल तो बहुत ही सोचती हूँ इस चीज़ को, जब तक हम कुरान से जुड़े हुए लोग, जिनको अब लोग कुरान वाले कहते हैं, आपको कहते हैं लोग कुरान वाले, आपके नाम के साथ नाम लग गया ना कुरान का, चले नूरुल कुरान ना लगाएं, कुरान का तो लग गया ना जी, वहाबन का नाम लग गया मान लिया, अब आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ला ताअतल्लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। चाहे आपके सगे भाई बहन के घर की बात हो, आप प्यार से मोहब्बत से सलीके से और रोब से भी और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दे, अगर कोई बात अल्लाह के हुक्म की नहीं है मैं नहीं मानूंगी, आपको भी रोकती हूँ खुद भी रुकूंगी, मैं आपके आगे मजबूर नहीं हो सकती, मैं आपकी इस बात पे अपने आप को गुनहगार नहीं कर सकती। आपकी बातें सर आंखों पे, आपका प्यार दिल में है, आपके लिए दुआएं रातों में हैं दिनों में, लेकिन आपकी गलत मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि लाता तली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। यकीन करें मैं आपको सच कहूँ, हमारे ख़ानदान सीधे हो जाएं, आप जितनी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं, अगर आप अपने अमल से, मैं नहीं कहती कि धमकियां दें या रोब डालें और वाकई फिर करके दिखाएं, फिर ये नहीं है कि एक के घर में तो ये रोब डाल के आ गए क्योंकि वो ससुराली घर था और मैके की शादी आई तो छोड़ दिया, या अपने ही बच्चों की शादी आई तो कहते अब क्या करें बच्चे नहीं मानते, तो मारे ऐसे बच्चों को पीछे, क्या करना है ऐसे बच्चों को जो आपको अल्लाह के नाफरमान बनाते हैं, छोड़ दें इनको। इब्राहिम तो छोड़ के आ गए थे ऐसी जगह जहां पानी नहीं मिलता, आप छोड़ेंगे आपके बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे, आप ऐसे बच्चों को क्यों पाल रहे हैं जो फजर पे उठते ही नहीं है, अब वो बच्चे थोड़ी हैं, वो छोटे थोड़ी हैं। आपकी बेटियों को हिजाब और हया नहीं, उनको लिबास का ख्याल नहीं, आप क्यों सुबह उठ के उनके पीछे फिरती हैं, क्या खाओगी भूख से मरना जाओ, नहीं मरती वो। याद रखिए गैरत के साथ जीना और अल्लाह की अताअत के साथ जीना, इसका मज़ा ही और होता है, ये मज़ा नहीं चखा हमने, लोग इस मज़े से बहुत पीछे गिवअप कर चुके थे और नबियों ने ये मज़ा ही चखा हुआ था कि बेटे छोड़ने पड़े तो छोड़े, बीवियां छोड़नी पड़ी तो छोड़ी, घर छोड़े तो छोड़े। और याद रखिए मुझे तो यही समझ आया है, इस दर्जे तक पहुंचे बगैर अल्लाह की मदद कोई नहीं मिलती, फिर हम जैसे ही हैं, सब तरफ ही धक्के हैं, ना दीन वाले हमें कोई कबूल करते हैं ना दुनिया वाले कबूल करते हैं, सारी जिंदगी बस हमने वो एक मीडियोकर बनकर एक मिडिल क्लास बनकर दुनिया में जिया है। देख लीजिए आप जरा दीनदारों में जाके हमारी बात पूछे, कहेंगे बहुत ही लीनियट है, बस जी छोड़े इनकी क्या बातें हैं। आप दुनियादारों से पूछे कहते हैं छोड़ो दुनिया, हमारी पार्टियों में आते तो हैं पर रंग में भंग डालते हैं, ना हमसे दुनिया वाले खुश हैं ना दीन वाले खुश हैं, वजह क्या है, हम दोनों को खुश रखना चाहते हैं। आप कहे पानी गर्म भी और ठंडा भी है, इनको मिलाऊं लेकिन ये गर्म भी रहे ठंडा भी रहे, नहीं, वो गर्म ठंडा मिलके माइल्ड हो जाएगा, वो ल्यूक वार्म हो जाएगा। ये हमारा ईमान जो है ना, इस वक्त ल्यूक वार्म है, ठंडा ईमान है। हम दूसरों को खुश करते हैं और हम अल्लाह को खुश नहीं करते। हत्ता कि देखिए रसूलुल्लाह की तात, अल्लाह के नबी तो हमें कोई ऐसी बात कहते ही नहीं है जो अल्लाह ने ना कही हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। लेकिन अगर रसूल कोई ऐसी बात कह दे जो अल्लाह ने नहीं कही, जो मुमकिन नहीं है, तो उसको भी नहीं मानना। इसी तरह से आप देखिए दूसरा दर्जा, वो शख्स या वो हाकिम जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म देता है, इसकी इताअत भी अल्लाह ताला ही की इताअत होगी। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह वर्रसूल इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर। सूरत निसा आयत 59 है। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हकूमत हैं इनकी भी, और अगर किसी बात पर तुम में इख्तलाफ वाक़े हो जाए, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो अगर खुदा और आखरत पर ईमान रखते हो तो इसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रजू करो। बात वाज़े हुई आपको? देखिए यहाँ फिर एक बहुत ही पिंचिंग पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। हम सिस्टम की इताअत नहीं करते, कानून की इताअत नहीं करते। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हम हुकूमत की धज्जियाँ बखेरते हैं। हम सोचते हैं हुक्मरानों के लतीफ़े बनाना या उनके स्कैंडल बनाना सरासर सवाब का काम है। इनको जलील करो, इनको रुस्वा करो, इनके जोक बनाओ, इनको लोगों के सामने नंगा कर दो, जायज़ नहीं है। यहाँ देखिए हाकिम की बात है ना, तो अगर इसको बड़े लेवल पर आप कहते तो हुक्मरान, सदर साहब, वज़ीर आज़म, जो भी, जिनको आपने बड़ा बनाया, अब आपको इसकी इजाज़त नहीं है कि आप उनके साथ बदतमीज़ी करें। पर आप कहते हैं वो तो काम ही ऐसे कहते हैं कि उनके साथ तमीज़ बरती नहीं जा सकती, तो फिर आपने गलत लोगों को चूज़ किया। गलत रस्तों पे चलकर ठीक रिजल्ट्स नहीं आ सकते। खाना पकाने का तरीका गलत इख्तियार कर लें, कभी एंड अच्छा नहीं बनेगा। जिसको आपने अल्लाह के तकवे की बुनियाद पे हुक्मरान बनाया है, उमर और अबू बकर और उस्मान जैसे लोगों को, फिर आपको उनकी माननी पड़ेगी। तो सिस्टम तो हमने खुद बिगाड़े और हालात हमारे देख लीजिए खुद ही बिगड़ गए। इसी तरह देखिए ये हुक्मरान का ताल्लुक सिर्फ मुल्क के हुक्मरानी से नहीं है। हर जगह का मैनेजमेंट पर्सन हुक्मरान कौन होता है? उलिल अम्र, देखिए जहाज में जाते हैं ना, तो आपके उलिल अम्र कौन होते हैं? एयर होस्टेसें और जो वहाँ लोग फिर रहे होते हैं उनकी तरफ से नॉमिनेटेड, वो आपके उलिल अम्र होते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, दीवारों पर लिखे हुए नोटिस, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठे, ये ना करे, वो ना करे, ये आपके उलिल अम्र है। हर जगह का मैनेजर, हर इदारे, हर जगह, हर महकमे में जो लोग उस चीज़ के टेक केयरर हैं, आपको उनकी माननी पड़ेगी। उलिल अम्र, आप किसी के घर जाते हैं, वो आपका उलिल अम्र है। वो कहते हैं आप ड्राइंग रूम में तशरीफ रखें, मैं भी आती हूँ। आप कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ। गलत तरीका। आप किसी को भी, आप हर एंगल में देखिए, इस्लाम इतना खूबसूरत रिलीजन है, किसी दूसरे को जिच नहीं करता। हम बेतकल्फी के नाम पे बाज़ दफ़ा हक जमाने के नाम पे, बाज़ दफ़ा रोब के नाम पे अगलों की बात को समझते नहीं है। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, या आप उनके उलिल अम्र ही हैं ना, जो एक एक छुट्टी का टाइम और एक एक आने का टाइम आपको बता के भेजते हैं, उनको तो हम बड़े प्यार से मानते हैं, उधर तो हमारी आवाज़ें दब जाती हैं। लेकिन हर मामले में ज़िंदगी के, अच्छा सवाल पैदा होता है, क्या उलिल अम्र गलत काम कह दें? स्कूल वाले कहते हैं बच्चों को भेजे डांस पार्टी है, हो सकता है ना, म्यूज़िक प्रोग्राम है, क्रिसमस की फेस्ट है, आप क्या करें? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब उलिल अम्र का कोई हुक्म अल्लाह और उसके कानून से टकराए, फिर किसकी तरफ जाना है? शुरू में क्या तीन लफ्ज़ हैं, देखिए भूल गई होगी आपको तफसीर इस आयत की, इसीलिए दोहरा दूं, शुरू में तीन चीज़ें थी, बात किसकी मानो? अल्लाह, रसूल और उलिल अम्र की। आम हालात में तीनों की माननी है, लेकिन जहां इख्तलाफ आएगा तो फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, यानी का वो उलिल अम्र, यही दीन है। काश ये दीन दीनदारों ने लोगों को दिया होता, आज ये दुनिया जन्नत बनी होती। मुझे समझ नहीं आती गलती लगी तो कहाँ लगी, ये उम्र डी ट्रैक हुई तो किधर हुई। बेसिक्स हैं दीन की। देखिए अगर इस टॉपिक और इस बुक को पढ़ते हुए अगर आपकी हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं आई ना, तो मैं इसको अपनी नाकामी समझूंगी। ये मेरे गलत टीच करने का सबूत होगा कि आपकी ज़िंदगी के किबले सीधे ना हुए। अकीदे का, मामले का, फेक का, डीलिंग का फ़र्क ना पता लगा। और यहाँ देखिए कितनी सीधी सी बात है। अब हम यहाँ घंटों के हिसाब से इस किताब पे वक्त लगाएं, इस मौजू को पढ़ें, ज़िंदगी में जाकर फिर हम वैसे के वैसे हो जाएं तो क्या बनेगा? नहीं। और साथ ही क्या कहा, इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर। ये कब होगा? अगर वाकई तुम्हारे दिलों में अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान है। तो कैसी आइडियल सोसाइटी सामने आती है? पुलिस की ज़रूरत रहती है किसी को? कोई इंटेलिजेंसीज की ज़रूरत रहेगी उस सोसाइटी में जहां अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ऊपर कर दिया जाए? और ये बात वाज़े तौर पर बता दी गई कि अगर अल्लाह ताला की अतात के दायरे से निकलकर किसी भी गैर अल्लाह की तुमने इतात की, ये लफ्ज़ जो किसी भी है इसको हाईलाइट कर ले। बस हम सोचते हैं हाँ है कोई गैर अल्लाह, वो पीर बनाए हुए हैं लोगों ने, वो गैर अल्लाह होंगे, जिसको मुश्किल कुशा कह देते हैं, जिसको गौस कह देते हैं, वो होंगे। किसी भी में आपका बच्चा भी आता है, शायद आपको अंदाज़ा है कि नहीं। किसी भी में आपका ख़ानदान भी आता है, आपके बच्चों के ससुराल भी आते हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी को इस नहज पे ले आए। अगर मुझे आपको इसका यकीन है ना कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, तो फिर आप कभी अपने बच्चों के ससुराल से नहीं डरेंगे कि वो उनकी गलत माननी है, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। फिर ये दामादी और ससुराल ताल्लुक का जो है इसका रोब ख़त्म हो जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि असल में अपने अंदर ही नक्श होता है। पहले दौर में लोग कहते थे हम बेटी के माँ बाप हैं। हाँ ये हम कब कहते हैं? जब बेटी की शादी आती है, ससुराल का मामला। और जब आप बेटे की माँ बन जाए फिर कहते नहीं ये अच्छा नहीं लगता कि अब लड़की वालों से ये बातें कहें। लड़की वाले हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमने ये ज़रूर करना है। भाई दुनिया में आपसे भी ज़्यादा कोई मजबूर और काबिल रहम बंदा है? मुझे तो रहम आ रहा है आपके ऊपर, आपसे ज़्यादा मजबूर और दुखी बंदा ही कोई नहीं कि दुनिया में आपकी कोई मानता ही नहीं है। आप जिस रूप में जाते हैं आप धुतकारे ही जाते हैं, लोग आपसे मनवा जाते हैं, आपकी क्या औकात है? देखिए क्या बंदे की इज्जत रहती है अपनी नजरों में जब वो किसी गैर की बात मान ले और अल्लाह को नाराज कर दे? दो टक्के का, दो कोड़ी का बंदा नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने ही जैसे एक इंसान की बात मान ली, उसको खुश कर दिया, रब को नाराज किया। और देखिए असल जंग ही अकीदे की जंग है। इसी के लिए ये नमाजें पढ़ाई जाती हैं और इसी के लिए ये दिन रात दीनदारी का जो हम काम करते हैं, इसका फ्रूट ये है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत ना आ जाए, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए ये डेंजरस कितना है, ये ख़तरनाक कितना है कि अगर तुमने गैर अल्लाह की इताअत की तो तुम दायरा ईमान से निकल जाओगे और कुफार में शामिल हो जाओगे। हम में से कितनों को किसी दूसरे को खुश करते हुए, जिसमें हमें यकीन है कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है, ये ख्याल भी आया कि ये मेरा अमल मुझे ईमान से निकाल कर कुफर में डाल देगा, कभी खौफ आया? उस वक्त तो हमारी मत ही मारी होती है, उस वक्त तो हमें होश ही नहीं होती। हम कहते हैं प्रेशर ही इतना था लोगों का, मैं पजल ही इतनी थी, मुझे फिक्र ही इतनी थी। कोई मोल नहीं आपका अल्लाह की नज़रों में। देखिए आयत है सूरह आल इमरान 110, इन तुतियु फरीक मिन अल्लज़ीना उतुल किताबा, अगर तुमने कहना माना अहले किताब के किसी गिरोह का, यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम, वो फेर देंगे तुमको तुम्हारे ईमान के बाद काफिरीन, काफिर बनाकर। यानी जब तुम गैर मुस्लिम तौर तरीके कबूल करोगे, उनके रस्म व रिवाज, उनका सेटअप, उनका लाइफस्टाइल, तो एंड क्या है? तुम भी काफिर। अब नाम के साथ जो मर्जी लगा लो। फिर हम रोध होके कहते हैं अल्लाह से तो बाद में माफिया मांग लेंगे, लोग नहीं खुश होते। तो भाई जाइए लोगों को खुश कीजिए। सर में दर्द हो जाए कौन ठीक करेगा? कमर में दर्द हो जाए कौन ठीक करेगा? बीमारी आ जाए कौन ठीक करता है? रिस्क ना हो घर में दाने ना हो फिर देखें आपको कौन पूछता है? लोग भी तभी आते हैं आपके पास जब आपके पास उनको खिलाने पिलाने को खूब अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अपने अंदर ये गुस्सा पैदा करें। मैं असल में आप सबको गुस्सा दिला रही हूँ इस वक्त। झूठ का नहीं दिला रही, मेरे अंदर से उठ रहा है। लेकिन आप सब अपने ऊपर इस बात को लें, आज के बाद मेरी जिंदगी में किसी और की इताअत नहीं है। और मैं आप सबको यहां बरमला कह सकती हूं, आज के बाद आपकी जिंदगी में आप कोई मौका आपके घरों में आता है खुशी का, कोई नेमत का, मैं कभी आपके किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं आऊंगी अगर जानते बूझते अगर आपने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी की। झूठ नहीं बोलूंगी, छुपा के नहीं आऊंगी, बहाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? हमारे ईमान की गैरत है ये। हमने सारी दुनिया को पढ़ाना है, खुद नहीं पढ़ना। सारे ही हमारे शागिर्द हों तो हम खुद अपने शागिर्द नहीं बनेंगे। अपने आप को आईने में देख कर ना खुद से पूछें कहाँ कमी है। अभी कुरान सुन्नत आपने पढ़ लिया, कई दफ़ा कुरान के इस कोर्सेज कर लिए, शॉर्ट कोर्सेज कर लिए, हदीस की जो जिसके नसीब में था, जिसने जितना लिया पढ़ लिया। अब आपको किताबों की ज़रूरत नहीं है, अब आपको आइनों की ज़रूरत है। और मेरी बात लिख के रख लीजिए, जो अपने अमल में बढ़ता जाता है ना, अल्लाह उसके लिए इल्म के रास्ते भी खोलता जाता है। मजीद इल्म वही लोग हासिल करते हैं जो पिछले इल्म पे अमल कर चुके होते हैं या कोशिशों में। मैं नहीं कहती कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल असाबिकून अलवलून पे होंगे, लेकिन ये जो ढिलमिल यकीन जिंदगी ना, ये निकल जाएगी। जब अमल नहीं आ रहा होता ना आगे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इल्म के दरवाजे बंद करते जाते हैं। और शैतान क्या कहता है, जब अमल जो कोई नहीं करना तो पढ़ना क्या, इतना पढ़ के क्या फर्क पड़ गया जब और पढ़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे हटते हैं, और ये आपको खुद भी नहीं पता होता, ये आपको आज ही बता दूं। वही लोग इल्म के रास्ते में आगे बढ़ते हैं जो अमल में आगे जा चुके होते हैं, उनका दिल कभी सैर नहीं होता। इससे जरूरत पैदा होती है ना, जगह बनती है, फिर और हिम्मत आती है। पहला खाना हजम हो जाए फिर और खाते हैं, पहली एनर्जी यूज हो जाए फिर और रेस्ट करते हैं। तो अगर पहला ही अंदर स्टक हुआ हुआ मैदे में तो और कहाँ से खाएंगे आप। इसलिए फिर लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इल्म का शौक कम हो जाता है। और अल्लाह ना करे एक अमल छोड़े आप, आज जहां बैठे ना अपने आप को लिखें, पूरा लिखें, अकीदे में मेरे कहाँ कमी है, अल्लाह से ताल्लुक में कहाँ कमी है, नमाजों में किधर कम हो, हिजाब लिबास में कहाँ कम हो, रिस्क हलाल हराम में कितना फर्क है। जब आपको अपनी बीमारियां नजर आए या खूबियां नजर आए, कोई एक खूबी छोड़े, आज है कल अल्लाह ना करे ना रहे, देखिएगा 6 माह में एक नहीं तीन हो चुकी होंगी जो आप छोड़ चुके होंगे। ये सिर्फ एक झिझक होती है गुनाह की। तो पहला गुनाह आप जान के करते हैं, दूसरा तीसरा गुनाह खुद ब खुद हो जाता है। अल्लाह से लड़े, जंग करें अल्लाह तला के साथ, कि अल्लाह मैंने गलत में नहीं पढ़ना, आप मदद करें मेरी। अल्लाह ताला मैं आपके रास्ते पे आपके मान पे ये बात कह रही हूँ, आप करें मेरे लिए हालात पैदा। आप देखिएगा कि जब आपके अंदर पहाड़ों वाला ईमान होता है ना, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। और अगर जिंदगी में सोचा ही है कि थर्ड क्लास ही जीना है, दुनिया वालों में भी थर्ड क्लास हैं तो जन्नत में भी हो जाएंगे, फिर आखिरी क्लास में कोई बात नहीं, जन्नत तो मिल जाएगी। दर्जे नहीं मिलेंगे आपको, मुझे भी नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलते दर्जे। ये जो 100 दर्जे जन्नत में बना दिए वो ये इताअत के फर्क के साथ है, याद रखिए। जितना ईमान बढ़ता है उतनी इताअत बढ़ती है, और जितनी इताअत बढ़ेगी उतना जन्नत का मुकाम आला होगा। और ईमान कम इताअत कम तो फिर अल्लाह हमें किसी भी कच्ची बस्ती में जन्नत की डाल देगा। अब जन्नत की कच्ची बस्ती भी कैसी होगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये सोच ही रखा है कि चलो जी सिर्फ एक दफा जन्नत में पांव पड़ जाएं तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर सही है, फिर मेरी सारी बातें भूल जाएं, छोड़ दें इनको, आगे चले। मायूस तो मैं नहीं करती, ना मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ना अपने से ना किसी और से, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं दिल चाहता हमारा क्या हजरत इब्राहिम के साथ वाली जन्नत में हो? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमारा उठक बैठक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो? देखिए इंसान ने जब नहीं चखी होती ना, नहीं चखी होती, लेकिन जिसको एक अच्छी चीज नजर आ जाए तो फिर तलब उसी की दिल में होती है। आप कहते हैं ये मेरी भी अच्छी है पर वो तो बहुत ही अच्छी है, क्या हम जन्नत में जाकर भी तरस नहीं चाहते? आज कितना को अमल करेंगे हम, है कितने साल कितने महीने, निकालें दिल से लोगों का डर, मत मरूबियत आने दें, फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए ये काम कितना आसान करेगा। फिर थोड़ी इसकी मजीद वजाहत आगे देखिएगा, क्योंकि ये है असल में खुलासा दीन का। आप जो भी कर लें दीन के नाम पे, एंड पे आपसे अल्लाह को यही मतलूब है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वरना धोखा है, झूठ है। इसी तरह से वो शख्स जिसने अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर व नवाही की परवाह ना की। पहले तो आप इसको हाईलाइट करें, है ना। अवामिर क्या? अमर की जमा। नवाही क्या? नहीं की जमा। अमर क्या है? हुक्म। और नहीं क्या है? मना की हुई चीजें। इंग्लिश में कह लें तो अमर क्या है? डूज। और नवाही क्या है? डोंट्स। ये करो ये ना करो, अगर इसकी परवाह ना की और ना इनको जरूरी समझा, बल्कि अपने जाती नजरियात, नंबर वन लिखे इस पे, नंबर टू अफकार, और नंबर थ्री अपनी ख्वाहिशात का पाबंद। बल्कि अपने जाती नजरियात, फिर अफकार, और फिर अपनी ख्वाहिशात का पाबंद हो गया, तो इसमें भी इसने अपनी जात को अपना माबूद ठहरा लिया और दायरा ईमान से खारिज हो गया। बात समझे आप? ये तीन है गैर अल्लाह इधर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये मौजू हमसे हजम नहीं होगा और मैं आगे जाऊंगी भी नहीं जब तक हमें इसकी शिद्दत का एहसास ना हो जाए। तीन खुदा हैं इस वक्त हमारे एक रब के सामने। सबसे पहले जाती नजरियात, ये क्या होते हैं? जाती मैंने जात, पर्सनल। नजरियात नजर से, नजर क्या होती है? देखना, विजन, व्यू। जाती नजरियात क्या होते हैं? जो मुझे दिखता है, या ऐसे जैसे मुआशरे में क्या हो रहा है, या मेरी जाती पसंद नापसंद क्या है। अफकार क्या है? फिक्र की जमा। फिक्र क्या होती है? थॉट। मुआशरे में जो एक रंग चल रहा है, यानी आप कह लें कि जो दो चीजें ना, जाती नजरियात अफकार, ये आप कह लीजिए मुआशरे के असर की वजह से जो बंदे की फीलिंग होती है। सब करते हैं, होता ही ऐसे है, इसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं था। एक तरफ ये पूरी सोसाइटी का रंग है, और दूसरी चीज ख्वाहिशात आपकी अपनी, अरमान, तमन्नाएं। तो देख लीजिए फिर आपके दो खुदा हैं, या आपका अपना नफ्स या आपका मुआशरा। तो ईमान निकल गया, मत पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हम लिखेंगे कि हमें इस कलमे को फिर कैसे पढ़ना चाहिए? इलाहुनल्लाह व नफसी व मुआशरा जबिरादरी कुंबा। कि इलाह मेरा अल्लाह भी है, सबसे पहले तो अल्लाह के नाम लेंगे हम। मेरा इलाह अल्लाह है, और मेरी जात भी है, और मेरा खानदान भी है। जाइए फिर इन तीन को मुकाबला कर, ये भी ट्रिनिटी है, ये तसलीस है। ईसाइयों की तसलीस तो हमें नजर आती है ना, आज मुसलमानों की कोई नहीं नजर आती। मैं कहती हूँ सिर्फ आप इस ईमान के मौजू को ले जाकर जरा सोसाइटी के अंदर डिस्कस तो करें। किसी शादी में चले जाएं, वहां जाके इस बाब में बात करके तो आए। किसी मैयत वाले घर में जाके बात तो करें। लोग कहेंगे ये आप पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं। हम तो सोच के आए थे कि आप हमें बहुत फजाइल बताएंगे और आप हमें बहुत खुशखबरियां देंगे और बाद में लंबी सी दुआ कराएंगे। छोटा सा दर्स, लंबी सी दुआ। और समझदार लोग हैं हमारी सोसाइटी के, कोई अनपढ़ नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है, बड़े इंटेलेक्चुअल है। दुनियावी एतबार से एक को दो और दो को पांच करने वाले लोग हैं। पैसा भी कमाने पे आते हैं, खूब कमाते हैं, दुनिया कमाते हैं, खूब कमाते हैं। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि अपनी जात माबूद बन जाती है जब अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी जात को ले आए। सूरह जासिया 23, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या बस तुमने देखा है उसको जिसने अपना इलाह अपनी ख्वाहिश को बना लिया। कहां देख सकते हैं इस शख्स को? आईने में देख सकते हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया। और ये कब बनता है? ये खुशियों के मौके पे बनता है, ये कामयाबियों के मौके पे बनता है। नेमतें मिलती हैं उसी वक्त, ज्यादा ही कुछ हमारा ये माबूद सार उठाता है। وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھوڑا سا۔ دیکھیں علم جہاں نکرہ میں آیا، دنیاوی علم ہے پھر بھی بھٹک گئے، کیونکہ وہ وحی کا علم نہیں اندر آیا تھا نا، وہ چیز آئی کوئی نہیں اندر جس نے روکنا تھا، جس نے اس معبود کی موت کا سبب بننا تھا وہ علم آیا ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے علم کے باوجود گمراہ ہو گیا، وہ ختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کانوں اور اس کے دل پر۔ کس نے؟ اللہ نے۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، ایک ایک جملہ لگ رہا ہے نا کہ کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے، آنکھوں پہ اس کے پردہ پڑ گیا، نہ نظر آتا ہے نہ دیکھ سکتے نہ بول سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب کی نیت بڑی اچھی ہے، ہم اندر سے بڑے ڈیسنٹ ہیں، یعنی سننا ہی نہیں چاہتے کوئی بات۔ آپ دیکھیے آج جس قدر بے پردگی اور مکس گیدرنگز کے کلچر ہیں ہماری سوسائٹیوں میں، آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں کہ انکل جی آپ میرے بزرگ تو ہیں لیکن میرا آپ سے ایک ڈفرینس ہے، تو وہ اور زور سے آپ کے سر پہ پیار پھیریں گے، چل تیرا باپ تو میرا دوست تھا، تو تو میری بیٹی جیسی ہے۔ اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آنی کہ نہ مسئلہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جوان لڑکے لڑکیوں کو آپ اکٹھا کر کے آپ ان کو دنیا داری کے کاموں میں ڈالیے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ان کے دل بڑے پاک ہیں، آپ ہر وہ سبب پیدا کرتے ہیں جو آگ لگانے والا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ویسے یہ ہیں بڑے نیک، یہ بالکل اس سے آگے کچھ نہیں سوچیں گے۔ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اندھے بہرے بن کر لوگ اللہ کے حکم توڑ کے، میں کہتی پھر خوشی کیسے مناتے ہیں، اور آپ ان کو خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہو کیسے جاتے ہیں؟ آپ تو رو کے آتے ہیں، آپ کا تو دل جل کے کباب بن جاتا ہے، اور اگر نہیں بنتا تو مان لیجئے کہ اپنے اندر بھی کمی ہے۔ یہ خبر ہے اس بات کی کہ آپ کا بھی ایمان کا کوئی لیول آج کل سیٹ نہیں ہے۔ فَمَنْ يَهْدِيهُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کون ان کو ہدایت دے اس کے بعد، بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ دیکھیے اسے ایک آیت کو ورد کر لیں، اس کا وظیفہ کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آنے والا ہے نا، آپ کے بچوں بچیوں کی شادی ہے، آپ کی اپنی شادی ہے، آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، اس آیت کا وظیفہ کیجئے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ترجمے کے ساتھ، کہ جب بندہ جانتے بوجھتے اللہ کے قانون توڑے پھر اس کو راہ کون دکھائے گا، اور نصیحت کوئی نہیں پکڑتا کوئی پھر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک کلیے کے مطابق کہہ دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ جو اس کلیے سے، یعنی جو اس قاعدے کلیے سے منحرف ہوا، منحرف کیا ہوتا ہے؟ حرفہ کہتے ہیں کنارے کو، ایک طرف ہو جانا۔ منحرف کا معنی کیا ہوا؟ منہ کو دوسری طرف کر لیا۔ تو کلمہ طیبہ سے اس کا ایمان ختم ہوا۔ اب ذرا اس اصول پہ لائیے، کتنے ہیں ایمان والے آج؟ کسی نے کہا نا کہ آج 4 بلین مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیں تو شاید بلال کا ایمان اس سے زیادہ ہو۔ یہ بات صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، ہمیں کوئی نہیں آئی۔ اور سب سے زیادہ کامن مسٹیک ہمارے ایمان میں آج یہی ہے، خاندانی معاشرتی لیول پر اطاعت نہیں کر پاتے۔ اور میں کہتی ہوں یہ جو چھوٹا سا حصہ نے پڑھا نا، اس کو پانی کی طرح لوگوں میں عام کر دیں کہ دیکھو لوگو، اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی تو عبادت بے شک نہ کرو، فرض تو پورے ہو ہی رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں دکھ رہا۔ کتنی غیرت آتی ہوگی اللہ کو، اور کتنا غصہ آتا ہوگا اس بندے پہ جو عمل کے وقت پیچھے ہٹ جائے اور پھر اگلی نماز میں جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کچھ شیئر کریں اس پہ، اپنے لیے بات کریں، کوئی ایسی بات خود سے کہیں کہ جس کے بعد واقعی اس پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ بہت ہی ہے خوف آنا چاہیے۔ دیکھیے یہ خوف مبارک ہے، یہی خوف تھا جو صحابہ کو ایک آیت سے دوسری پہ جانے ہی نہیں دیتا تھا، کہتے تھے پہلے پچھلے پہ عمل کر لیں پھر اگلے پہ آئیں گے۔ دیکھیے آپ اس کو اپنے اوپر لیں، ایک دن میں آپ کا بچہ تین چار دفعہ آپ کی کوئی بات نہ مانے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور ایک طرف تو بالکل ہی منہ پیچھے کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آ کے لاڑ کرے، پیار کرے، بات نہ مانے تو کیسا لگے گا؟ جب ہم بات نہیں مانتے اللہ کی، تو اس وقت اپنے بچوں کو سامنے لائیں کہ جتنا ہمیں ان پہ غصہ آتا ہے، اللہ کو ہم پہ کتنا غصہ آتا ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہوتے صریح نافرمانی، صریح نافرمانی پہ اس وقت بات ہو رہی ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دوسرے ہماری نہیں مانتے، چپ رہو، نہ کو، تو یہ ہم اور موقع دیتے ہیں اگلوں کو کام کرنے کا. اگر ہم جرت کر کے وہ انتہائی قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں نا آج سے 5 سال پہلے، تو ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہوتا آج. ہم خود لوگوں کو ڈھیلا کرتے ہیں کہ ہم نے جلنا بھی ہے، کڑنا بھی ہے، پھر بھی تمہاری غلط باتوں میں آ جانا ہے. ڈرتے ہیں ہم اندر سے، اور ہر بندے کو اللہ کا خوف ہے اندر سے، لیکن یہ جب ہم ان کو جھوٹی تسلیاں دے کر ان کی غلط چیزوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اس کا نتیجہ وہ کہتے ہیں اس وقت تو انہوں نے مان ہی جانا ہے، پھر اگلا موقع آئے گا تو پھر دیکھیں گے. جی آپ، سمپل سا ایک اصول اس میں سے نکلا، لا تعتل مخلوق فی معصیت الخال. اس میں آپ اپنے ماں باپ کو بھی کہہ دیں، آپ اپنے شوہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بیوی تمہاری بات میں نہیں مان سکتا جہاں میرے رب کا حکم آ گیا. بات ختم، 100 باتوں کی ایک بات ہے. سورت انعام کی بھی ایک آیت ہے، سورہ یونس بھی آگے مجھے آ رہی ہے کہ نہ صحیح تو، یعنی وہ اس کا ایک ربط نہیں میرے ذہن میں آ رہا، لیکن یہ کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے. ان اخاف ان صحیح تو ربی عذاب یوم نظیم.
ہمارا پڑھنے کا فائدہ بھی تب بھی ہوگا نا کہ جب ہم اپنے گھر میں تلائی کریں گے، اور ہمیں یہ کرنا ہے.
اور کون کرے گا؟ اپنے آپ سے کہیں، اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہم سے نہیں ہوگا، تو کیا غیروں سے ہوگا، یا کفر والوں سے ہوگا، یا وہ مسلمان جو دین سے ہی دور ہیں ان سے ہوگا؟ آپ کے اوپر اللہ کی نظریں ہیں، میرے اوپر اللہ کی نظریں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ کا ہمارے سوا پھر کون ہے؟ امیدیں بھی رب کو پھر ہم سے ہی ہیں. غیروں کو تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، ہم جیسوں کو پھر اللہ پکڑ بھی لیتا ہے. جی، یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے. آج آپ اللہ کی نہیں مانتے، کل آپ کے بچے آپ کی نہیں مانتے، آپ کے شوہر آپ کی نہیں مانتے، آپ کے بھائی بہن نہیں مانتے. یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، غالبا حضرت علی یا کن کا قول ہے کہ جب میں اپنے غلام کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میرے آگے سر اٹھاتا ہے، میرے لیے سورہ نحل کی آیت ہے، سحریہ کے لفظ آتے ہیں اس میں، جب میں اپنے سے چھوٹا یا اپنے غلام یا ملازم میں کوئی کجی دیکھتا ہوں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو. اٹس ٹرو، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور ہماری چیخیں نکلتی ہیں پھر تب، جب ہمارے بچے یا ہمارے ڈیپینڈنٹس ہماری بات نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا، اکثر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا میں مر گئی تو یہ نہ کرنا، میں مر گیا تو یہ نہ کرنا. بھائی، آپ ان کی زندگی میں وہ نہ کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کا عمل دیکھیں گے. آپ منہ سے کہتے ہیں یہ نہ کرنا میرے ساتھ، وہ نہ کرنا، میرے بعد اچھے رہنا، تو جو آپ نے کہنا ہے وہ تو ان کو بھول جانا ہے. ہاں، جو آپ کا عمل ہوگا نا، وہ ان کو یاد رہے گا کہ ہماری اماں یہ نہیں کرتی تھی، ہماری امی یہاں نہیں جاتی تھی. تو سیدھی سی بات ہے. اور آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اگر آپ آج کا سبق مس کر دیتے تو کیا جاتا؟ اور کیا آپ کو یہ نہیں لگتا جب آپ مس کر دی جاتی ہیں چیزیں، آج بھی آدھی کلاس غائب ہے میرے حساب سے، تو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کیا چھوڑا؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان، کوئی مر جائے، میں دیکھتی ہوں کوئی ایک مرتا ہے، لوگ 4 دن اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، پھر جائیں گے ہفتے بعد، پھر جائیں گے سوا مہینے بعد، بھی کیا لے گیا تمہارا؟ تو جیتے جیتے ہمیں لوگوں کی ہدایت کی فکر نہیں ہوتی. جی آپ دیکھیں، جو کیل خود ہی نہیں ٹھکا ہوا، اس پہ تو آپ 2 گرام کی چیز نہیں ٹانگ سکتے. ہم نہیں ٹھکے ہوئے تو ہم پہ کون ٹھکے گا؟ میں کہتی ہوں اس گرج میں بندہ اپنے آپ کو اور دین پہ پکا کر لے، اللہ رخصت دے پھر بھی کو نہیں لینی، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے جمے، ہمارے اوپر لوگ بھی کچھ تھوڑا سا بھروسہ کر سکے. جی آپ، چونکہ وہ ایک رواج بن گیا نا کہ اتنے دن آنا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں جمع ہونے کو ہم نوخہ سمجھتے تھے، आज आप ये बात करें, लोग कहते हैं, लोग कहेंगे जी को मरने वाले का दुख ही नहीं किया। तो बहरहाल ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। हमें सारी बात का फिर मैं कहूंगी कि हदफ अपनी जात को बनाना है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ बिगड़ी हुई हूँ। देखिए, जब तक मुझे अपनी फिक्र नहीं लगेगी, मैं दूसरों की फिक्र नहीं कर सकती। यही हमारे दीन का तरीक़ाकार है, इसी पे अपने आप को लेके चलना है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।